पृष्ठ संख्या 68 द्वितीय खंड आधुनिक युग षष्ठ अध्याय डेकार्ते के पूर्व का दर्शन भूत वर्तमान और भविष्यत ये तीनों अनंत काल के मानव कल्पित विभाग हैं। तीनों पृथक पृथक होते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। वर्तमान भूत में प्रतिष्ठित हैं और भविष्यत को जन्म देता है। नए युग के बीज प्राचीन युग में विद्यमान रहते हैं और उन्हीं में से नया युग पनपता है। कोई भी नया युग अकस्मात ही नहीं टपक पड़ता, उसके और प्राचीन युग के बीच में एक लंबा संधि काल रहता है। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रेने डेकार्ते को पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। आधुनिक युग की सभी विशेषताएं डेकार्त के दर्शन में पूर्णतया विकसित हुई हैं। डेकार्त का समय 1596 से 1650 ईस्वी है, किंतु आधुनिक युग की विशेषताओं का सूत्रपात कुश निवासी निकोलस या निकोलस ऑफ कुश के ग्रंथ आइडियोटा में जो 1450 में प्रकाश में आया हो गया था। सन 1450 से 1644 तक का समय दर्शन के आधुनिक युग का संधिकाल है। इस संधिकाल में आधुनिक युग का अरुणोदय हुआ, जो डेकार्त के दर्शन में सूर्य बनकर चमक उठा। पाश्चात्य दर्शन का आदि युग ग्रीक युग सौंदर्य और कला का युग है। ग्रीक दार्शनिक सौंदर्य और कला के उपासक तथा सामंजस्य के प्रेमी थे। उनका लक्ष्य था सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वय की अनुभूति और पद्धत भी थी संश्लेषणात्मक। मध्य युग में दर्शन ईसाई धर्म का दास बन गया और एरिस्टोटल के तर्क को तोड़ मरोड़ कर ईसाई धर्म के सिद्धांतों को सिद्ध करने के काम में लाया गया। मध्य युग है ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय के प्रभुत्व का युग। धर्म संस्था चर्च और उसके धर्म गुरु पोप के व्यापक निरंकुश शासन का युग। एरिस्टोटल के तर्क को काट छाट कर धार्मिक मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए किए जाने वाले शास्त्रार्थ का युग। इसकी पद्धति है धार्मिक अंधविश्वास की और उसकी सिद्धि के लिए किए जाने वाले तथाकथित शास्त्रीय निगमनात्मक तर्क की। पृष्ठ संख्या 69 आधुनिक युग है स्वातंत्र का युग, व्यक्ति के स्वातंत्र का युग, धार्मिक परंपरा और प्रभुत्व के प्रति विद्रोह का युग, दर्शन को धर्म की दासता से मुक्त करने का युग, विचार स्वातंत्र, भावना स्वातंत्र और कर्म स्वातंत्र का युग, निष्पक्ष और स्वतंत्र आलोचना का युग, भौतिक विज्ञान के प्रबल अभ्युदय का युग एवं समाज संस्कृति और कला के पुनरुत्थान का तथा प्रगतिशील जन जागरण का युग। इसकी पद्धति है वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक, जिसकी प्रतिष्ठा है आगमनात्मक तर्क में। यद्यपि बाणी और वीणा कला और सौंदर्य, सुरुचि और समन्वय की उपासिका ग्रीक विचारधारा के आगे चीर फाड़ विश्लेषण और नग्न सत्य की पुजारिन आधुनिक विचारधारा वैसे ही लगती है जैसे भव्य वस्त्रों में सुसज्जित कलावती सुंदरी के आगे साधारण कपड़ों में लिपटी हुई छेनी और हथौड़े वाली मजदूरिन। तथापि आधुनिक विचारधारा का विरोध और संघर्ष हुआ। मध्ययुग की विचारधारा से जो सुंदरी और मजदूरिन दोनों को हे समझकर साध्वी या भिक्षुणी बन गई थी और जिसने मजदूरिन को गिरजाघर की चार दीवारी में बंद करके उसे अपनी दासी बना रखा था, इस मजदूरिन ने अपनी दासता की बेड़ियां काट फेंकने के लिए कलावती सुंदरी की शरण ली। बच्चों और बूढ़ों में मित्रता होते देर नहीं लगती। मध्य युग और आधुनिक युग के संधिकाल का इतिहास धार्मिक परंपरा और प्रभुत्व के क्रमिक ह्रास का तथा व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता एवं भौतिक विज्ञान के क्रमिक अभ्युदय का इतिहास है। यह सांस्कृतिक पुनर्जन्म या रेनेसा और धर्म सुधार रिफॉर्मेशन का इतिहास है। जिन कारणों से यह जन जागरण हुआ उन पर विहंगम दृष्टिपात कर लेना असंगत न होगा। मध्ययुगीन यूरोप में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों पर पोप का सार्वभौम अधिकार था। जब यह रूढ़िवाद और निरंकुश धर्म शासन उत्तरोत्तर कठोरतर और हीनतर होने लगा, तब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों ने ही अपने आप को इस धार्मिक कुचक्र से मुक्त करने की ठान ली। अंधविश्वास के प्रति विद्रोह होने लगा। विचारों की दासता असह्य हो उठी। सांस्कृतिक पुनर्जन्म का यह पहला कारण था। मध्य युग में सत्य का मानदंड था पोप का आदेश, किंतु इन धर्म गुरुओं ने अपने आदेशों का सिक्का जमाने के लिए उनका तर्क द्वारा समर्थन करना शुरू किया। यह घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि एक बार जब तर्क का खून जनता के मुंह लग गया तो बुद्धिवाद और उसके साथ साथ स्वतंत्रवाद का प्रबल अभ्युदय हुआ, जिसके आगे धार्मिक आदेश नहीं टिक पाए। यह था दूसरा कारण। पृष्ठ संख्या 70। तीसरा कारण था रहस्यवादी साधना का उदय। अनेक रहस्यवादी संतों ने यह बताना शुरू किया कि ईश्वरीय प्रेम और निर्विकल्प ज्ञान ही साधना द्वारा मनुष्य ईश्वरीय आनंद की अनुभूति और प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। इसके लिए धर्म ध्वज पोप के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम हुआ चर्च की ठेकेदारी और पोप की दलाली का अंत। इस रहस्यवाद में से व्यक्तिवाद की तीव्र लहर उठी, जो आधुनिक युग की विशेषता है। चौथा कारण था भौतिक विज्ञान का प्रबल विकास और उसके कई महत्वपूर्ण अन्वेषण। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार सृष्टि का केंद्र है पृथ्वी और पृथ्वी निवासी मानव का सृष्टि में सर्वाधिक महत्व है। सृष्टिकर्ता ईश्वर स्वर्ग में स्थित है और वहीं से सृष्टि साम्राज्य का संचालन करता है। शैतान के उकसाने पर आदि मानव आदम ने निषिद्ध फल खा लिया और तभी से संसार में दुख और पाप का साम्राज्य फैला। ईसाई मत को मानने से और धर्म गुरु पोप के आदेशों पर चलने से मनुष्य इस दुखमय और पापमय संसार से छुटकारा पाकर परम पिता के स्वर्ग में जाकर ईश्वरीय आनंद का उपभोग कर सकता है। ईसाई धर्म की इन मान्यताओं को भौतिक विज्ञान के विकास से गहरा धक्का लगा। रोजर बेकन 1214-94 और लियोनार्डो द विंसी 1452-1519 ईस्वी ने इन मान्यताओं की जड़ें हिला तो दी थी, किंतु इन्हें उखाड़ देने का श्रेय है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कॉपरनिकस 1474-1543 को। कॉपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी न तो सृष्टि का केंद्र है और न सूर्य पृथ्वी की ओर घूमता है, अपितु सृष्टि का केंद्र है सूर्य, और यह पृथ्वी ही जो गोल है सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो 1564-1642 ईस्वी और केपलर 1571-1630 ईस्वी के गणित और ज्योतिष के अनुसंधानों से कॉपरनिकस के मत की पुष्टि हुई। पृथ्वी इस विशाल सृष्टि का एक लघु खंड मात्र है और मानव एक साधारण प्राणी। ईश्वर और उसके स्वर्ग की कल्पना धार्मिक कल्पना मात्र है। पारलौकिक सुख की कल्पना के कारण यह लौकिक सुख को दुख और पापमय समझकर छोड़ देना युक्ति संगत नहीं। मानव जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। इस जीवन को सुखमय बनाने के साधनों की खोज करना भौतिक विज्ञान का लक्ष्य है। मानव जीवन को समझना ही सत्य के स्वरूप को समझना है और इसका एकमात्र साधन है इंद्रिय अनुभूति, न कि कोरी धार्मिक बौद्धिक कल्पनाएं। पृष्ठ संख्या 71। इन सैद्धांतिक अनुसंधानों के साथ साथ ही विज्ञान ने जिन वस्तुओं का अन्वेषण किया और उनके उपयोग ने भी मानव बुद्धि के क्षेत्र को व्यापक बनाया, व्यक्तिवाद को बल दिया, स्वतंत्रता की पुष्टि की और धार्मिक अंधविश्वासों को उखाड़ फेंका। बारूद की खोज ने युद्ध कला में भारी परिवर्तन ला दिया। छापे की मशीन ने ज्ञान के प्रकाश को चर्च की चार दीवारी से निकालकर चारों ओर फैलाया। दूरबीन के आविष्कार से गणित, ज्योतिष और सौर मंडल के ज्ञान में क्रांति हुई। कुतुब नुमा के आविष्कार से नए नए देशों को खोजने में सहायता मिली। अब मानव धर्म के संकुचित क्षेत्र से निकलकर भौतिक विज्ञान के व्यापक क्षेत्र में आ उतरा। पारलौकिक सुख की कल्पना छोड़कर इस लोक में ही सुख स्थापित करने के लिए उसने कमर कसी। सांस्कृतिक पुनर्जन्म का पांचवा कारण है वे ऐतिहासिक घटनाएं जिनसे इस जन जागरण को बल मिला। सर्वप्रथम इस जागृत का उदय इटली में हुआ और वहीं से इसका प्रकाश यूरोप के अन्य देशों में फैला। धार्मिक बंधनों के विरुद्ध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में आंदोलन हुआ। व्यक्तिवाद और स्वातंत्र की लहर दौड़ी। प्राचीन ग्रीक विचारधारा का पुनरुत्थान हुआ। ग्रीक कला के प्रतीकों का और ग्रीक साहित्य के ग्रंथों की पांडुलिपियों का प्रबल अन्वेषण होने लगा। लोग धार्मिक आदेशों की अपेक्षा ग्रीक कलाकृतियों को, फूलदान या मूर्ति को और ग्रीक साहित्य के ग्रंथों को अधिक आदर देने लगे। प्लेटो, एरिस्टॉटल और अन्य ग्रीक दार्शनिकों एवं साहित्यिकों की कृतियों का अध्ययन होने लगा। इनके लैटिन भाषा में अनुवाद होने लगे। प्लेटो और एरिस्टॉटल के अध्ययन के लिए अलग अलग विशेष संस्थाएं स्थापित हुईं। कई राजाओं ने, सामंतों ने और कुछ धर्म गुरुओं ने भी, जो अपने चरित्र पतन के लिए प्रसिद्ध हैं, इस साहित्यिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में पूर्ण सहयोग दिया। इसी समय सन 1453 में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई। वह थी पूर्वीय यूरोपीय साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाना। इस घटना के कारण कई ग्रीक विद्वान कुस्तुनतुनिया से भागकर शेष यूरोप में और विशेषतः इटली में फैल गए और वहाँ पर अपने पांडित्य का प्रकाश फैलाने लगे। दूसरी ऐतिहासिक घटना हुई सन 1492 में कोलंबस द्वारा हिंदुस्तान के धोखे में अमेरिका की खोज, और तीसरी घटना हुई सन 1498 में वास्को द गामा द्वारा यूरोप से हिंदुस्तान आने के समुद्र पथ की खोज। इनके कारण यूरोप के व्यापार और उपनिवेशवाद का प्रबल उत्थान हुआ और साथ ही व्यापारी जहाजों में लदकर पूर्व के माल के साथ साथ विचार भी यूरोप में जाने लगे। पृष्ठ संख्या 72। इटली में यह जागरण साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक हुआ, किंतु जर्मनी में इसने धर्म सुधार का रूप लिया। सन 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर 1483 से 1546 के धर्म सुधार आंदोलन का श्री गणेश हुआ और 1521 में वह काफी जोर पकड़ गया। पोप के कैथोलिक संप्रदाय के विरुद्ध ईसाई मत के ही प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हुआ और फिर यह जर्मनी के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में भी फैल गया। व्यक्तियों ने अपने आप को पोप के धार्मिक आदेशों के बंधनों से तथा देशों ने स्वयं को चर्च की प्रभुसत्ता से मुक्त कर लिया। चर्च ने इस आंदोलन को दबाने की भरसक चेष्टा की। विरोधियों को कारावास में डाला गया, विविध यंत्रणाएं दी गईं, जीवित जलाया गया, किंतु फिर भी यह धर्म सुधार आंदोलन पनपता ही गया और अंत में इसने पोप की प्रभुसत्ता को समाप्त करके ही दम लिया। अब कुसा के निकोलस से लेकर डेकार्ते के पहले तक के दार्शनिक संधि काल के मुख्य मुख्य विचारों पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए।